તારીખ 20/12/1993 શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 79
શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક 7મા અધિકાર નિશ્ચયાભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ કા જૈના ભાષી કા સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતે હૈ परद्रव्य को जानने के विषय में उनको भ्रांति है कि ज्ञान परद्रव्य को जानेगा तो उसको दोष उत्पन्न हो जाएगा, राग द्वेष हो जाएगा। लेकिन ज्ञान दशा में परद्रव्य को जानना होता है, केवल ज्ञान की दशा में भी परद्रव्य को जानना होता है, तो जानने के कारण से दोष होता है सो बात तो नहीं है। ये मुद्दा चलता है, जो बात चलती है यही मुद्दे पे चलती है। और उसके सामने प्रश्न निकाला है, फिर वह कहता है कि ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं। बड़े बड़े मुनि हैं, वो भी परिग्रह को त्याग करना चाहिए ऐसा जानकर, ऐसा मानकर त्याग किया भी है और त्याग का चिंतन भी करते हैं। 12 भावना में त्याग भावना आती है ना, अकिंचन भावना, त्याग भावना, तो बड़े बड़े मुनि भी करते हैं। उसका समाधान कि जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराए घरों का त्याग करती है, उसी कारण वितराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। वो जानने के कारण में क्या लिया है, राग द्वेष के कारण पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करना, जिस पदार्थ में राग होवे उसे पदार्थ को ग्रहण नहीं करना और द्वेष करके कोई पदार्थ का त्याग नहीं करना। जो बात चलती है वो तो जानने की चलती है और ग्रहण त्याग का विषय जानने के कारण नहीं है, वो तो राग द्वेष के कारण से है। तो वो बात तो सही है कि राग द्वेष होवे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराए घरों में जाने का त्याग है ही नहीं। जिस घर में कुशील का सेवन हो जाए ऐसे घर में नहीं जाए, मैंने हल्के परिवार में नहीं जाए, लेकिन जहाँ ऐसा कोई कारण नहीं है तो ऐसे दूसरे घर में जाने के इसके लिए कोई मना नहीं है। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है ही नहीं। जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग नहीं है। देखो क्या लिखा है, जानने का त्याग। जानना और राग द्वेष करना अलग अलग बात है। जिस परद्रव्यों को जानने से राग द्वेष नहीं होता है, उसको जानने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम तो जानने के ही मना करता हो, तो ये बात तो बनने वाली है ही नहीं। फिर वह कहता है, उसी में से दलील निकाला, कि जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिता आदि के घर जाती है तो जाए, अपने पिता के घर भी जाएगी, बिना प्रयोजन जिस चीज के घर जाना तो योग्य नहीं है। ऐसे अपने पिता के घर जाए इसमें तो हमको नहीं लगता है, लेकिन बिना प्रयोजन किसी के घर पे चली जाती है। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर सात तत्वों का विचार करना, देवगुरु शास्त्र का विचार करना, सात तत्व का विचार करना, छद्रव्य का विचार करना, लेकिन बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। ठीक द्रव्यानुयोग का विचार करे तो हमको उसमें तकलीफ नहीं दिखती, लेकिन वो गुणस्थान के करणानुयोग का जो बात करे तो वो हमको ठीक नहीं लगता, वो तो बिना प्रयोजन वाली बात दिखती है। तो ऐसे ऐसे परिणाम तो नहीं लगाना चाहिए। खास ये बात लिया है, टोडरमल जी का करणानुयोग में बहुत क्षोभ था, और सम्यक ज्ञान चंद्रिका के वो अपने पढ़ी ना प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि कोई ऐसे द्रव्यानुयोग को मुख्य करके करणानुयोग का तिरस्कार करता है उसको ज्ञान प्राप्ति होती नहीं है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उसको नहीं होगी, ऐसा ऐसी बात मात्र लिया है। क्योंकि चारों अनुयोग भगवान की वाणी है और प्रयोजन के विषय में चारों अनुयोग का कुछ न कुछ अंश तो प्रयोजन भूत रहता ही है। पूरा करणानुयोग को उड़ा दे तो पहला गुण स्थान और चौथा चौथा गुण स्थान वाली कोई परिस्थिति नहीं रहेगी कि मैं मुमुक्षु हूं तो पहला गुण स्थान में हूं, सम्यक दर्शन पाकर के मुझे पहले चौथा गुण स्थान में तो आना ही चाहिए, वो बात भी नहीं रहेगी। समाधान, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पिता आदि या मित्र आदि के बिगड़ जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण गुणस्थान आदि व कर्मादि को भी जाने, तत्वों के विशेष जानने के लिए क्या प्रयोजन इसमें है, सात तत्वों का तुम विचार करते हो तो उसमें भी समर निद्रा किस गुणस्थान में होती है, मोक्ष किस गुण स्थान में आएगा, बंध किस गुण स्थान में, आश्रव बंध किस गुण स्थान में है, इसका विशेष जानने के लिए तो तेरे गुण स्थान को भी प्रयोजन पड़ेगा थोड़ा बहुत। तथा यहां ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो वीट पुरुषों के स्थान पर न जाए, यदि परवश में जाना बन जाए तो वहां कुशल सेवन न करे तो स्त्री 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 शीलवती ही है। जानकर तो नहीं जाए, राग द्वेष के विषय में जानकर को तो नहीं जाए, लेकिन परवश जाना हुए तो भी वो अपना शील की रक्षा करेगी। उसी प्रकार वितराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण परद्रव्यों में न लगे, क्या प्रयत्न पुरुषार्थ उपाय मैंने पुरुषार्थ पुरुषार्थ पूर्वक तो रागादि के विषय में न जाए, यदि स्वयं में उनका जाना हो जाए फिर भी परवश से पूर्व संस्कार वश से जो भी उपयोग बाहर चला जाता है जहां राग द्वेष का कारण बने ऐसा विषय में भी चला जाता है और वहां रागादि न करे, जैसे पूर्व कर्म के हिसाब से व्यवसाय होता है गृहस्थी होती है तो वहां पुरुषार्थ करे, अपना रागादिक से बचने का पुरुषार्थ करे, ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ करे, तो परिणति शुद्ध ही है तो उसको प्रवृत्ति के काल में भी पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे खाना खाते हैं तो वहां स्वाद का राग आएगा, ये चीज अच्छी लगती है राग होगा, ये अच्छी नहीं लगती है द्वेष होगा, वहां भी पुरुषार्थ करके उससे बचने का प्रयत्न कर सकता है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिश होने पर उनको जानते ही नहीं अपने स्वरूप का ही जानना रहता है ऐसा मानना मिथ्या है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिश होने पर उनको जानते ही नहीं अपने स्वरूप का ही जानना रहता है ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो है परंतु रागादिक नहीं करते, जानते ही नहीं है ऐसी बात नहीं है। उसको परिश्रम होता है तो मिछू करता काटता है तो विद्या को जानता नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जान करके अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, रागादिक द्वेषादिक नहीं करते। इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए भी वितराग भाव होता है ऐसा श्रद्धान करना क्या सिद्धांत में चर्चा का मूल मुद्दा क्या है कि परद्रव्य को जानते हुए राग हो ही जाए ऐसी बात नहीं है। जिसको वितराग भाव का पुरुषार्थ है उसको परद्रव्य को जानते हुए पुरुषार्थ का परिणमन से शुद्धता हो सकती है या रह सकती है। और परद्रव्य की जो प्रवृत्ति है वो पूर्व कर्म वशात कौन उसको मिटाएगा? तो इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र किसी की ताकत है कि भाई इस जीव को ज्ञान हुआ इसलिए उसका नसीब है पूर्व कर्म जो किया था वो बंद कर दो? ऐसा बन सकता नहीं है। जो भी सुबह सुबह उदय आए क्या मुमुक्षु की भूमिका में सुविचारणा का एक खास मुद्दा यह है कि उनको ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जो भी सुबह सुबह उदय आए मुझे राग भी नहीं करना है मुझे प्रीति ए प्रीति कुछ नहीं करना है। जो भी मेरे किए हुए पूर्व कर्म है वो उदय में आएगा, कभी शुभ का उदय भी आएगा कभी अशुभ का भी उदय आएगा। कोई भी आओ मेरे किए हुए हैं तो कोई भी उदय आओ मुझे भी प्रीति अप्रीति करना नहीं है। ऐसे वैसा निश्चय पूर्वक वो अपना प्रयास करता है। इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए भी वितराग भाव होता है, जानने से राग भाव हो ही जाएगा द्वेष हो ही जाएगा ऐसा श्रद्धान करना योग्य नहीं है। पर ऐसी वस्तु स्थिति भी नहीं है इसलिए ऐसा सिद्धांत भी नहीं। वस्तु स्थिति नहीं तो सिद्धांत भी नहीं है। हाँ वितराग कोई नहीं बन सकता। संसार में ऐसा कौन संसारी जीव है कि जिसको आठ कर्म का उदय नहीं हो? बताइए, जब सभी संसारी जीव को आठों कर्म का उदय है तो फिर उसको वितराग होने का तो कारण ही नहीं कोई रहा। ऐसा नहीं है, कर्म के उदय के काल में भी वो अपने स्वरूप सम्मुख के पुरुषार्थ से वितरागता को उत्पन्न कर सकता है। पश्चाताप आ जाना चाहिए, करने का सवाल नहीं है, सहज जिसको निर्दोष होना है उसको आए बिना रहेगा नहीं। अगर नहीं आता है तो उसको निर्दोष होना ही नहीं है, ये बात है। पश्चाताप नहीं आवे और करें ऐसा प्रकार नहीं, हो ही जावे कि अरे 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 जीव तुझे तो निर्दोष होना है ये क्या हो रहा है, ये तुझे होना ठीक है नहीं। ऐसा आ ही जाएगा।
श्रीमद जी ने ऐसी प्रवृत्ति में भी
हाँ बहुत, उनका तो काम ऐसा ही था, जीवन ही ऐसा था। कृपालु देव का तो जीवन ही बोध स्वरूप था कि उसने तो निवृत्ति के काल में कोई साधक कर्म की निर्जरा करे इससे अधिक निर्जरा उन्होंने प्रवृत्ति के काल में की है। जब उनका पुरुषार्थ इस उस प्रकार का बहुत बढ़िया पुरुषार्थ चलता था उसी प्रकार का, तो उन्होंने ये सोचा कि जब पूर्व कर्म तो बांधे है ही, ज्ञान दशा में एक समय भी ऐसा नहीं गया कि पूर्व कर्म नहीं बांधा हो, तो पूर्व कर्म तो बांधा ही है तो उसको जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए क्या करना है? कि जितना तुम लेनदार हो आ जाओ एक साथ आ जाओ
दे देना।
अभी मैं समर्थ हूँ तुमको पूरा चुकाने के लिए समर्थ हूँ। तो बार बार सुभाग भाई ने प्रश्न पूछते थे वो कि पूर्व कर्म को जल्दी से खत्म करना करना हो तो क्या करना बताइए क्या। हाँ सुभाग भाई को पूछते थे। सुभाग भाई की विचारधारा बहुत निर्मल थी और वो ज्ञानी होने के योग्य हो गए थे। जो जीव मुमुक्षुता में ज्ञानी होने के योग्य होता है उसका सभी अभिप्राय ज्ञानी के अनुकूल होता है और सब समस्या का समाधान जैसे ज्ञानी निकालता है वैसे वो भी निकालता है।
क्या कहते थे
वो तो पता नहीं है क्या कहा था क्योंकि वहां पत्र तो कृपालु देव का ही छपा है। सुभाग भाई का तो कुछ छपा नहीं, एक आध पत्र छपा है उसमें उन्होंने लिखा है बहुत प्रमोद किया है कि आपका उत्तर सुनकर पढ़ करके हमको बहुत प्रमोद हुआ, ऐसा उत्तर हमारे प्रश्न का ज्ञानी ही दे सकता है या ज्ञानी होने वाला ही दे सकता है,
ऐसा बोले।
हाँ ऐसा लिखा ऐसा प्रमोद किया था। तो ऐसे मुमुक्षु का संग करके ज्ञानी को भी सत्संग होता है और आत्मलाभ होता है, ऐसी बात है। इसलिए वो चाहते थे, उनके सत्संग को वो चाहते थे, ये एक वस्तु स्थिति है।
एक पत्र में ऐसा लिखा मुमुक्षुओं के दासत्व प्रिय है, मुमुक्षुओं के दासत्व के प्रिय मतलब।
हाँ
सोगानी जी ने भी ऐसा किया।
हाँ ऐसा ही किया, उन्होंने भी प्रवृत्ति के काल में बहुत पुरुषार्थ किया, गृहस्थ में रहकर के भी इतना पुरुषार्थ किया कि एक ही भव उसको बाकी रह गया, दोनों को एक भव बाकी रह गया, बस सबको निपटाया, बुला बुला करके निपटा दिया। ऐसा काम किया,
फोर्स बहुत था क्या बात।
हाँ पुरुषार्थ तेज था उतना, आओ कोई भी प्रकार का सुबह सुबह उदय आओ, मैं मेरे स्वरूप में से विचलित होने वाला नहीं हूं, ऐसा। फिर प्रश्न उठाया है तथा वो कहता है ऐसा है तो शास्त्र में ऐसे कैसे कहा कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। शास्त्र में तो ऐसी बात चली है कि स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान चारित्र आचरण रूप परिणाम को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। प्रवृत्ति को कहीं भी, प्रवृत्ति को बाह्य प्रवृत्ति को कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि ये साधना का कारण है, साधना का निमित्त है, ऐसा तो नहीं कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम करने का फरमान है, आदेश है, प्रवृत्ति करने का कहीं आदेश नहीं है। आपने तो ये भी बात लिया कि कोई बाधा नहीं, कर सकता है, तो ये बात थोड़ी उपटांग लगती है। समाधान, अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था, उसे छुड़ाने के लिए उपदेश है। जिसको परद्रव्य में अपनत्व का श्रद्धान था, परद्रव्य में अपने का ज्ञान था पर अपना जानकर उसमें लीन होता था, उनको तो कहा कि स्वद्रव्य में श्रद्धान कर, स्वद्रव्य का ज्ञान कर, स्वद्रव्य में लीनता कर। आप ही में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से परद्रव्य में राग द्वेषादि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शन होते हैं। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि न होते तो केवली के भी उनका अभाव हो, जो बच्चे केवली ने केवली को बीच में ले आते हैं, क्योंकि वो परदेव को जानते हैं। पूरा राग द्वेष मोह खत्म हो जाने के बाद भी वो परद्रव्य को जानते हैं। परद्रव्य को परद्रव्य के रूप में जाने, उसमें तो वितरागता आएगी, उसमें राग कहाँ आएगा। जहां स्वद्रव्य की प्रवृत्ति करने को कहा है, वहां तो परद्रव्य में अपनत्व छुड़ाने के लिए के कहा है। तो परद्रव्य में अपनत्व कब छूटेगा? परद्रव्य को परद्रव्य जानेगा तब। परद्रव्य को जाने ही नहीं ऐसा नहीं बनेगा, परद्रव्य को परद्रव्य जानेगा तब छूटेगा अपनत्व। जानने का तो बंद हो ही नहीं सकता, सुपर प्रकाशकत्व होने से बंद हो ही नहीं सकता। जहां परद्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। देखो कहां तक लिया, वहां तक राग द्वेष लिया कि स्वद्रव्य तो भला है परद्रव्य बुरा है, तो तुझे राग द्वेष मिटने वाला नहीं है। क्या लिया? पर अनिष्ट है, पर मैं एक स्व ही इष्ट हूं, तो पर का द्वेष और स्व का राग हो गया। तो राग द्वेष तो मिटाने की बात ही, वितराग होने की बात ही नहीं रही। क्या कैसा दलील दिया है? बहुत बढ़िया दलील दिया है। वो बात अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी ने भी लिया है। यही उपाधेय का वहां प्रकरण चला है कि इसको ये करे उसको उपाधेय करे, इसको ये करे उसको उपाधेय करे। ऐसी बात चल 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 करके आगे कहां तक आया कि स्वद्रव्य की उपाधेय है और परद्रव्य सभी है। जितने परद्रव्य है वो ही है, परद्रव्य प्रभाव ही है, और एक स्वद्रव्य ही उपादे है। तो कि वहां तक तो तेरे राग द्वेष के विकल्प विकल्प मिटने वाले नहीं है। तो फिर क्या करें? समस्या वो आती है कि स्वद्रव्य में निर्विकल्प भाव से लीन होना, वही स्वद्रव्य की उपादेयता है। स्वद्रव्य का उपादेय का विकल्प करे, राग करे, उसमें उपादेयता स्वद्रव्य की नहीं आती है अभी। वो परमात्मा प्रकाश में तो बहुत लिया है योगिंद्राचार्य ने। निर्विकल्प समाधि के काल में ही स्वद्रव्य उपादेय है, ऐसा लेते हैं हर जगह, बहुत लिया है। निर्विकल्प समाधि के काल में ही परमात्मा उपादेय है, बाकी विकल्प में उपादेय रहता नहीं है। ये बात वितराग दर्शन बिना कहीं नहीं आएगी। अनुभव पहला तो आमज हो ही नहीं, टोन क्या हो गया, ये टोन अच्छा नहीं है। ऐसी बात है, जानना एक बात है, वजन हो जाना दूसरी। वो जानने का विषय है कि जहां तक विकल्प वाली दशा है वहां ऐसे ही विकल्प होते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा हो है नहीं, ये बात बराबर नहीं है। उसमें अभिप्राय मिलता है, अभिप्राय की मिलावट हो जाती है। जानना एक बात है और अभिप्राय पूर्वक जानना दूसरी बात है, ऐसी बात है। बहुत सूक्ष्म और सावधानी का मार्ग है, सूक्ष्म प्रकार से सावधानी करने का ये बात है, ऐसी बात नहीं है।
क्या करना?
कल एक बात लिया था, कल परसों एक बात लिया था कि जैसे स्वरूप का ज्ञान कैसे करना, निश्चय स्वरूप का ज्ञान
कैसे करना।
क्योंकि निश्चय स्वरूप का ज्ञान यथार्थ पद्धति से स्वरूप लक्ष्य पूर्वक करना, स्वरूप को लक्ष्य में लेकर के करना, या वेदन गुण से और वेदन से करना, गुण तो स्वभाव है, स्वरूप है, तो वेदन अंश से करना, उस प्रकार का प्रयत्न से करना। परलक्षी ज्ञान कितना भी करोगे स्वरूप का, आत्मस्वरूप का, वो थर्ड पर्सन रह जाएगा, आत्मस्वरूप नहीं आएगा, ज्ञान में आत्मस्वरूप
नहीं आएगा।
तो ज्ञान में स्वग्नि को लक्ष्य में लेकर के उसका ज्ञान करने की विधि है, इसलिए विधान कहते हैं। स्वरूप निरूपण को क्या कहते हैं? स्वरूप का विधान। विधान क्यों कहा? कि विधि पूर्वक कहा गया तो सुनना, ज्ञान में लेना वो भी विधि पूर्वक है, समझना भी विधि पूर्वक है। तो कोई ऐसे प्रश्न करे कि पहले तो परलक्षी ज्ञान में होवे ने तो प्रश्न उठाया था कि पहले तो परलक्षी ज्ञान में समझे ने। भैया पहले परलक्षी ज्ञान में समझे ने, समझना पड़े ने, ऐसा करके तुझे वहां रुकना है, वो बात को ठीक करना है, निकालना नहीं है, इस बात को मिटाना नहीं है। वो तो अनंत काल ऐसे प्रवृत्ति किया, तुमको शुरू से ही यथार्थ विधि से समझने में क्या आपत्ति आती है, हमारा प्रश्न है ये। जैसे तू यथार्थ पद्धति से उपयोग लगा करके समझता है तो उपयोग लगा करके समझता है, लेकिन पर लक्ष्य ज्ञान में, तो फिर स्वलक्ष्य ज्ञान में यथार्थ विधि से उपयोग लगाने में तुझे कौन सी आपत्ति आती है? हाँ, सुबह सुबह वही चर्चा भी चली कि अपने वर्तमान ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में ज्ञान वेदन तो है ही, अब विशेष ज्ञान द्वारा उसको देखने से वो आविर्भूत हो जाता है। क्या आविर्भूत करना नहीं पड़ता है? विशेष ज्ञान उसको देखता है तो वो आविर्भूत हो जाता है। इतना करने में तुझे कौन सी तकलीफ आती है? उतना नहीं कर सकता तुम? इतना भी तेरे में पुरुषार्थ नहीं है क्या? तो फिर आचार्य मास्टरी गुरु कहेंगे कि तू क्लीब हो, तेरे में नपुंसकता है, पुरुषार्थ तेरे में नहीं है, ऐसा कहेगा। बात तो उतनी है, भीतर में उतना काम है कि जो है उसे देखना है, नहीं है तो नहीं दिखाई दे, तो उतना क्यों नहीं करता है? तू तेरे अंतर अवलोकन से ये बात को पता चलना चाहिए कि मेरी इतनी बड़ी रुकावट कहाँ हो गई, कहाँ मैं रुकता हूं, किस जगह अटकता हूं, रुकता हूं, मैं अटकता हूं, हिंदी में अटकता है, नहीं अटकता शब्द रुकता अटकता है, तो उतना तो अपना अवलोकन कर तो पता चल जाए कि क्या कारण है। जहां परमात्मा का भेटा हो जाए, परमात्मा की भेंट हो जाए, उसको छोड़कर ऐसी इससे कौन सी बड़ी चीज है कि जहां तू रुकता है, वो सीधी सादी बात है।
अवलोकन नहीं है,
क्यों नहीं है? उपयोग तो सारी दुनिया में लगाता है,
अपना नहीं है,
फिर क्यों नहीं लगाता है? जिसको इस बात को पता ही नहीं है कि इससे क्या लाभ होता है, वो तो बेचारा भटकता है। जब तुझे तो इस बात का पता चल गया, फिर क्यों? बस उतना देखना है, कोई लंबी चौड़ी सिर फोड़ी में जाना नहीं है। लंबी चौड़ी सिर फोड़ी क्यों करे? तलाश करे। गुरुदेव कहते थे कि जहां तुझे सुख लगता हो, जैसे रुपये में सुख लगता है, एक एक परमाणु को पृथक पृथक करके एनालिसिस देख, उसमें कहां तेरा सुख लटकता है कहीं दिखता है कहीं, कहे तो नहीं, पृथक्करण कर ले। जहां भी सुख की भ्रांति है वहां सुख है कि नहीं है उसका पूरा तलाश कर ले, जांच कर ले। और क्या, देखो जहां परद्रव्य को बुरा जानना और निज द्रव्य को भला जानना हो वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए, हो गया राज, तुझे राग द्वेष तो वहां हो ही गया। स्वद्रव्य को भला मानने में राग होता है, परद्रव्य को बुरा मानने में प्रतिपक्ष तो आ ही जाएगा उसमें। जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धानादि रूप प्रवृत्ति करें, तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं। ये सम्यक दर्शन होने का ही कारण है, इसके पहले सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। पर को पर रूप जान, स्व को नाश हो जाएगा, ऐसी बात है नहीं कहीं। उसमें तफावत दो प्रकार से, कि हे में भी द्वेष नहीं आ जावे, ऐसा है ये तो होना चाहिए क्या। जैसे मुनि दशा का एक दृष्टांत ले लेवे, कि कोई आत्मा मुनि हो जाता है तो क्या उसको क्या होता है, क्या अपने कुटुंब परिवार को वो छोड़ता है, त्याग करता है तो उसको द्वेष आता है क्या, कि ये मेरे राग द्वेष का कारण है, मैं उसको छोड़ दूं, जंगल में चला जाऊं, ऐसे मुनिपना आता है क्या। ऐसा नहीं आता है, वो बात नहीं है। किसी के पर द्वेष करके त्याग करना ऐसा सन्मार्ग हो सकता नहीं है। हाँ ठीक बात है। तो स्वरूप की वो तो कहने में जा रहा था कि स्वरूप की उपादेयता उतनी बढ़ गई कि परद्रव्य का ग्रहण करने का विकल्प ही नहीं आता है, तो परद्रव्य के विषय में वो निर्विकल्प हो गया क्या। न मेरा राग का भी कारण है, न मेरा द्वेष का भी कारण है। परद्रव्य भला तो नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, तो उसने तो बुरा माना, बुरा माना तो द्वेष हो गया। ऐसे ऐसे त्याग होता है,
बुरा भी नहीं मानने देते।
नहीं नहीं नहीं, फिर द्वेष हो जाएगा। शास्त्र में तो बहुत प्रकार के वचन आते हैं कि कुटुंब परिवार तेरे धुतारा की टोली है, क्या कहेंगे,
धुतारा की टोली है।
तो क्या द्वेष कराने के लिए बोला, वो भी श्री गुरु ने लिखा है, वो भी छठे गुण स्थान वाले भावलिंगी संत थे लिखने वाले, पद्म प्रबलधारी देव नियम सार में लिखा है, वो कोई तेरे द्वेष कराने के लिए नहीं लिखा है, तू धुता जाता है अपने आप से, इसलिए उनका आरोप किया कि वे धुता रहे हैं। वास्तव में वे धुता रहे भी नहीं और कुछ भी नहीं है, तुम तेरे को संभाल दो, कि तुझे अच्छा लगता है क्या। तो वो कहते हैं भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हाँ पिता हुए तो पिताजी 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 करने लगे, हाँ बड़े भाई हुए तो भाई साहब करना लगे, हाँ बहुत अच्छा लगे। तो तू धुताता तो तू है, तो आरोप उस पर लगा दिया, द्वेष करने के लिए बोला नहीं है। वचन का शब्दार्थ प्रमाण लेवे तो गड़बड़ हो जाएगा।
साड़ी भद्र से 32 स्त्री होता, एक एक स्त्री का त्याग करता था, एक एक खेल समझ।
उसको ऐसा विकल्प आया, उसको ऐसा विकल्प आया तो मुझे इस प्रकार से त्याग करना है, तो उतनी बात है। इनको द्वेष किया है ऐसी बात नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान होते ही सभी परद्रव्यों से अपनत्व का संबंध तो छूट गया, चाहे 32 स्त्री हो चाहे 8 हो। धनाशाली भद्र की कथा है ना, तो 8 स्त्री वाले ने एक झटके से छोड़ी, और उन्होंने 32 दिन लगाया 32 स्त्री को छोड़ने के लिए। लेकिन अभिप्राय में तो दोनों को एक सी बात होती है, कोई तेज पुरुषार्थ वाला होता है तो तीव्रता से उनको वितरागता आती है, किसी को थोड़ा रुकते रुकते आती है। मरमा तो बता गप्पा कर सिद्धांतिक बात लेना। इसलिए बहुत क्या कहें, देखो अभी ये बोल टाइप में लिया है, इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन स्वयं वितराग भाव है। सम्यक दर्शन वितराग परिणाम है, राग परिणाम नहीं है, तो ये वितराग की श्रद्धान है, उसमें कोई भला बुरा जानने की बात नहीं है। किसी भी परद्रव्य को तो भला बुरा क्यों जानता है, क्यों श्रद्धान करता है, वो भला बुरा है ही नहीं, वो तो ज्ञान का ज्ञेय है। जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, वितराग भाव का प्रयोजन है, वितरागता की प्राप्ति करने का प्रयोजन है। तो जिस प्रकार से रागादि मिटना मैंने वितराग भाव होना, इस प्रकार से जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में सम्यक ज्ञानी का उपयोग परद्रव्य के प्रति जाता है तो मिथ्या ज्ञान हो जाता है क्या? तुम्हें परिणति में रहा वो तो सम्यक ज्ञान है, जो उस आत्मा के साथ रहा वो सम्यक ज्ञान, और जो उपयोग पर के प्रति कहा वो मिथ्या ज्ञान, ऐसा होता है क्या?
है।
पूरी एक पर्याय सम्यक ज्ञान की है, वो तो चारित्र में ले जाते हैं, इसलिए उपयोग जो पर प्रति गया उसको चारित्र में ले जाएगा, और वो चारित्र को भी मिथ्या चारित्र ऐसा विशेषण मिलता नहीं है, वो अचारित्र उसको कहेंगे क्या? उसको अचारित्र कहेंगे, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। और वो उस जो उपयोग गया उस उपयोग से धर्म लाभ नहीं होता, सम्यक दृष्टि का उपयोग पर पदार्थ में गया तो उससे साधना नहीं होती क्या? उसके उससे साधना नहीं होती, वो बाधक अवश्य है लेकिन मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्या फिर भी वो मिथ्या ज्ञान, क्योंकि वो भिन्न रहता है, वहां गया फिर भी भिन्न ही रहता है, अपना भान खोता नहीं है, अपने भान में रहता है, ऐसी बात है। इसलिए जानना सम्यक ज्ञान है। तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, सम्यक दर्शन भी वितराग परिणाम है, सम्यक ज्ञान भी वितराग परिणाम है, और सम्यक चारित्र भी वितराग परिणाम है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। ऐसा वितराग भाव को ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। मैंने भूल से भी कहीं राग को मोक्ष मार्ग मानना योग्य नहीं है। राग है, सुख तो राग है। इस प्रकार निश्चय नहीं के आभास सहित एकांत पक्ष के धारी जैन आभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। किसका निरूपण किया? जैनियों का किया है, अन्य मत की बात नहीं की है। वो जो जैन कुल में जन्म लिया ऐसे मनुष्य की बात किया है तो बोले जाते हैं वो तो जैन है, वास्तव में जैन नहीं है। उसको बोला जाता है कि वो जैन है, लेकिन वास्तव में वो जैन है ही नहीं, क्योंकि उसको आभास हुआ है कहीं न कहीं, उसको एकांत हो जाता है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के, अभी तक पहले तो निश्चय के पक्ष का धारक था, निश्चय का एकांत पक्ष करता था, कोई थोड़ा करता है कोई ज्यादा करता है, थोड़ा करे तो भी मिथ्या दृष्टि है जैनाभासी है, ज्यादा करे तो भी मिथ्या दृष्टि है, वर्ग तो दोनों का एक ही है, जाति एक सी है। अब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि लेते हैं। व्यवहाराभासी मैंने क्या कि व्यवहार ने के विषयभूत जितने पदार्थ हैं, जितने पर्याय हैं, जितने गुण भेद हैं, उसमें उसका आभास हुआ है, मैंने सही ज्ञान सही श्रद्धान नहीं है, और मानता है कि सही है, क्या सही नहीं है और मानता है कि सही है, उसको आभास कहते हैं। ऐसे वो भी जैनों की बात किया है। अब व्यवहाराभास के पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। मैंने जैनों में तीन तरह के मिथ्या दृष्टि होते हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उपयाभासी। दोनों का आभास हो किसी में, थोड़ा निश्चय का भी आभास हो, थोड़ा व्यवहार का भी आभास हो, आएगा वही प्रकरण आएगा इसमें आगे जाकर, तीसरा प्रकरण वो लिया है। और सबसे खतरनाक भी वो है, क्यों कि वो तो दोनों में तो एकांत हो गया, दूसरा पक्ष नहीं है, और वो क्या कहेगा कि हम तो दोनों में पाँव रखते हैं, व्यवहार में भी निश्चय में भी, इसलिए हम तो सही है, हम तो कहीं एकांत नहीं करते, तो तुम डबल एकांत करते हो, कितना
डबल।
वो एक पक्ष का एकांत करता था तो दोनों पक्ष का एकांत करता है, वो तो सुलझेगा, तेरा सुलझना आसान नहीं है। हाँ दोनों नहीं को मानते हैं, एक नहीं मानने वाला तो एकांती हो सकता है, दोनों ही को मानने वाला कैसे एकांती हो सकता है, ऐसा लेगा तो आभास हुआ है, मानना तो हुआ है लेकिन सही मानना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यथार्थता और अयथार्थता, क्या जानना, जानना पूर्वक मानना होता है, तो शास्त्र का तत्व का तो तत्व ज्ञान का तो विषय है, यथार्थ जाने तो आभास नहीं होवे और अयथार्थ जाने तो आभास हो ही जाए। मुमुक्षु की दशा में तो सम्यक ज्ञान नहीं है लेकिन यथार्थता तो आनी चाहिए, ये बात है। और ऐसी यथार्थता आनी चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान का कारण बने, जो मुमुक्षुता में से ज्ञानी हो जाए, ऐसी मुमुक्षुता ज्ञान अवस्था का कारणभूत बनती ही है। इसको इसको पढ़ना है, वो कृपालु देव का 23 का साल में पढ़ ले पत्र, बहुत बातें आई है उसका। अंबालाल त्रिभुवन भाई खंभात के भाइयों पर लिखा हुआ पत्र है। मुमुक्षुता के अंशों से ग्रहित हुआ आपके हृदय हमको परम संतोष देता है, क्या आप लोगों में कुछ मुमुक्षुता का अंश आया है, पूरे मुमुक्षु नहीं बने क्या, लेकिन मुमुक्षुता का कुछ अंश आया तो हमको संतोष होता है कि ठीक है अच्छे हैं, लाइन पर आ जाएंगे आप लोग। आपका हृदय लिया है, आपके परिणाम नहीं लिया है। कृपालु देव अगले का हृदय को पकड़ते थे कि इसके हृदय में क्या रहा है, अंतकरण को देखते थे, शुद्ध अंतकरण से है या ऊपर ऊपर से है, ऐसी बातें हैं, ऐसा पकड़ा है कि आपके हृदय को देखकर हमको थोड़ा संतोष हुआ है कि भीतर में कुछ आपके हृदय में मुमुक्षुता का अंश की प्राप्ति हुई है। अनादि काल का परिभ्रमण अब समाप्तता को प्राप्त हो जाए, ऐसी जिज्ञासा मुमुक्षुता कैसे आती है?
ऐसी जिज्ञासा
कि हमारा अनादि काल का परिभ्रमण अब समाप्तता को प्राप्त हो जाए, ऐसी जिज्ञासा, ये भी यह भी एक कल्याण ही है, भावना में अंश है। कल्याण तो होगा तब होगा, मुक्त होगा परिभ्रमण से तब, लेकिन ऐसी जिज्ञासा हुई तो कारण की उत्पत्ति हुई तो उसमें अंश आ गया। ऐसा
सच्ची भावना से
भी
सच्ची भावना
से
156
સોમવારે રવાના થયા તમને મળવા આવી શકાશે? તમે તેઓ અને બીજા લગતા માંડલિકો ધર્મ ને ઈચ્છો છો, માંડલિકો એટલે મંડળ વાળા, માંડલિકો એટલે રાજા ને આપ ઓર આપકે મંડળ વાલે સાધર્મી ધર્મ કા ધર્મ કો ઈચ્છતા હો યદિ વહ સર્વ કા અંતરાત્મા સે ઈચ્છના હોગા કહાં સે ઈચ્છા હોગી ઉપર ઉપર સે નહીં अब आप लोगों की धर्म की प्राप्ति अंतरात्मा से इच्छा पूर्वक होगी तो वह परम कल्याण रूप है। वो अंतर से भावना उठे वो कल्याण रूप है। मुझे तुम्हारी धर्म जिज्ञासा का रूढ़ापणो, काठियावाड़ी भाषा से हिंदी नो था, रूढ़ापणो सुंदरत्व देखकर संतोष पाने का, प्राप्त होने का, संतोष प्राप्त होने का कारण है। सारे समाज की अपेक्षा से देखा जाए तो बहुत हतभाग्य काल है, लोगों का भाग्य नहीं है। ज्ञानी होते हैं लेकिन लोगों का भाग्य नहीं है, ज्यादा क्या कहना है। जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, देखो जिनागम में निश्चय की मुख्यता से भी उपदेश होता है और व्यवहार की मुख्यता से भी उपदेश होता है, उसे मानकर उसको उसका उसका वजन ज्यादा दे दिया, उसे मानकर बाह्य साधन आदि की ही का श्रद्धान आदि करते हैं। क्या मान जानता है मानता है, आचरण क्यों नहीं करता? देखो आया बाह्य साधन का श्रद्धान करते हैं, आचरण देखे तो माने नहीं तो नहीं माने, जानता है मानता है इसके क्या करना, आचरण में क्यों नहीं लेता है? बाह्य साधन आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं। वो जितनी भी धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, जितने अंग की, स्वाध्याय करता है, पूजा भक्ति करता है, दया दान करता है, जप तप करता है, यात्रा करता है, सदो कुछ भी करे, यम नियम संयम सब कुछ पाले, वो सब मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। सब में मिथ्यात्व लगा क्या? एक भी उनकी प्रवृत्ति सही नहीं है या मोक्ष के कारणभूत नहीं है, आत्मा के शांति के कारणभूत नहीं है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है क्या?
व्यर्थ ही व्यर्थ,
सब व्यर्थ है, ऐसी बात है। जिनागम पढ़ करके करता है, किसको पढ़ करके? अनिमति नहीं है। जिनागम पढ़ करके जो धर्म की प्रवृत्ति करते हैं, धर्म के सभी अंग उसका ले लिया, वो धर्म के अंग बोले जाते हैं ना व्यवहार दृष्टि से, वो सभी मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। सो विशेष कहते हैं, उसका विस्तार करके हम कहेंगे कि कैसे कैसे वो गलतियां करता है, और इसलिए उनको धर्म की प्राप्ति कभी नहीं होती। कितना भी करे तो भी उसको अधर्म की प्राप्ति रहती है, धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। अन्य मत में तो कुछ भी करो तो धर्म कर लिया, दान दिया तो धर्म कर लिया, भक्ति पूजा कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया तो धर्म कर लिया, शास्त्र पढ़ लिया तो धर्म कर लिया, शास्त्र सुन लिया तो
धर्म कर लिया।
नहीं, ऐसा नहीं होता। जैन में ऐसा होता नहीं है। अलग मार्ग है ही, अलौकिक मार्ग है ये, लौकिक मार्ग नहीं है। लोक में जो धर्म मार्ग चलता है ऐसा नहीं है, विशिष्ट प्रकार का है, उच्च कोटि का है, और आत्मा को जन्म मरण के परिभ्रमण से छुड़ाने वाला है, ऐसी बात है। नहीं, वो कोई धर्म का कारण वो कल देखा कि नहीं देखा टीवी में, वो एक विद्वान ने प्रश्न पूछा कि हमारे शास्त्र में तो जैन शास्त्र में अच्छा था कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को प्रभाव नहीं पाड़ सकता, तो देखो लाखों हजारों मनुष्य को प्रभाव बाहुबली जी का होता है कि नहीं होता है, तो क्या ऐसा शास्त्र में लिखा है? वो जैन वो बराबर मान्यता नहीं है। उल्टो आयो विरुद्ध आयो
है,
शुभ करना है या धर्म करना है? क्यों आए इधर? शुभ करने को आए कि धर्म करने को आए? शुभ धर्म है या अधर्म है, क्या है? यहाँ तो बात धर्म अधर्म की चलती है, शुभ अशुभ की नहीं चलती।
मैंने इसलिए पूछा, इतने सारे वो डाल लेते लेप वगैरह, ये सब बताए हैं क्या
सपना भी? नहीं। वो दूध डालना और चावल का पाउडर डाला एक दफे सुगंधित द्रव्य, भगवान सब गड़बड़, बहुत गड़बड़ होने लगी है सब, कोई इसमें कोई दम है नहीं। चलो उसकी चर्चा का टाइम बिगाड़ना ही है।
आचार्य
जी
ठेकरी करे
हाँ, तो
देवादि देव मंदिर भगवान।